भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नश्चत्वारिषु अवधेषु नित्यं भागवशीलया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिति हरे कृष्ण ग्रंथवार श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 5 श्लोक संख्या 6। अध्याय का शीर्षक है देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना। कथित भोगे यो विष्णुर्वर्णये गुणः तस्य वैकुंठ के रूप में प्रकट होने वाले भगवान को अनुभाव महान कार्यकलाप कथित बताए जा चुके गुणः दिव्य गुण च भी परमुनः अत्यंत यशस्वी भगवान पृथ्वी के रेणुओं का सह जो कोई विवमे गिन सकता है यह ऐसा पुरुष विश्व विश्व के वाणी गिन सकता है गुणान दिव्य गुणों को अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा यद्यपि भगवान के विविध अवतारों के महान कार्यों तथा दिव्य गुणों का अद्भुत विधि से वर्णन किया जाता है किंतु कभी कभी हम उन्हें नहीं समझ पाते किंतु भगवान विष्णु के लिए सब कुछ संभव है यदि कोई भगवान के सारे परमाणुओं को गिन सके तो वह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है किंतु ऐसा कर पाना संभव नहीं है अतः कोई भी भगवान के दिव्य गुणों को नहीं गिन सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रसंग में भगवान के यशस्वी कारण का उल्लेख है जय तथा विजय नामक उनके निजी अंगरक्षकों को सनक सनातन सनत कुमार तथा सनंदन महान नाम के ऋषियों द्वारा शाप दिए जाने के बाद दैत्य बनने पर घटित हुई। जय को हिरण्याक्ष रूप में वराहदेव से युद्ध करना पड़ा और इन्हीं वराहदेव का वर्णन रणत कल के संबंध में किया जाता है किंतु यह युद्ध प्रथम मनु स्वयंभू के शासनकाल में हुआ। अतः कुछ विद्वानों के अनुसार वराहदेव हुए हैं किंतु अन्यों का मत है कि वह स्वयंभू मनु के राज्यकाल में प्रकट हुए और रैवत मनु के काल तक जल के भीतर रहते रहे। कुछ लोग को संदेह हो सकता है कि यह कैसे घटित हुआ होगा किंतु उत्तर यह है कि कुछ भी घटित हो सकता है सब कुछ पॉसिबल है स्विट्जरलैंड में। यदि कोई ब्रह्मांड के परमाणुओं की गणना कर ले तो वह भगवान विष्णु के गुणों को गिन सकता है किंतु ना तो वह परमाणुओं को गिन सकता है और ना भगवान के दिव्य गुणों को ही। ओम अज्ञानतिम्रांधस्य ज्ञानांजनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पपरूपश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना। तस्यां भाव कथितो गुणाश्च परमोदयः भौमान वेणु सगुण है यह विश्व विश्व होने गुणा। यदि भी भगवान के विविध अवतारों के महान कार्य तथा दुर्ग जगत का अद्भुत विविध से वर्णन किया जाता है किंतु कभी कभी हम उन्हें नहीं समझ पाते। किंतु भगवान विश्व के लिए सब कुछ संभव है यदि कोई भगवान के सारे परमाणु को गिन सके तो वह भगवान के गुणों की गणना कर सकते हैं। किंतु ऐसा कर पाना संभव नहीं है। कोई भी भगवान के दिव्य गुणों को नहीं गिन सकता। इस भौतिक जगत में जब मेटेरियल कैलकुलेशन किया जाता है तो 1+1 कितना होता है और 1-1 कितना होता है? 0 होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में 0 नहीं है। वहां सब कुछ एब्सोल्यूट है कि नहीं? इसलिए सब कुछ पॉसिबल है, वहां सब कुछ संभव है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ परिपूर्ण है। ओम पूर्णवदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णात् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है और से जो निकला हुआ है वो भी पूर्ण है। तो उनकी पूर्णता यही है कि सब कुछ पूर्ण है और सब कुछ उनके लिए संभव है। हमारे लिए सब कुछ संभव नहीं है क्योंकि हम लोग विभू नहीं है। हम क्या है? अणु है। अणु एटम को भी अणु कहा जाता है और हम जीवात्मा को भी अणु कहा जाता है। और भगवान की दृष्टि से वास्तव में हम एटम ही जैसे ही है। वही हमारी स्थिति है। इतने छोटे हम लोग शुद्र है कि इसलिए वही शब्द का उपयोग किया गया संस्कृत भाषा में। अणु को भी एटम कहते हैं और अणु को आत्मा आत्मा भी कहते हैं। तो जीवात्मा को अणु इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान के अंश होने के कारण और बहुत ही माइन्यूट है ना। इसलिए एक द्वारा बताई गई श्वेतास्त्र उपनिषद में बताया 1/10,000 पार द टिप ऑफ हेयर। तो इसे समझने के लिए है कि अगर ये आत्मा का अगर ये साइंस बताया गया है तो आत्मा का एक फॉर्म भी है। और जब फॉर्म की बात की जाती है तो आत्मा फॉर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वर्णन किया जाता है तो उसके क्वालिटी भी है उसके गुण भी है। इसी तरह से भगवान विभु है और विभु होने के कारण उनके जो गुण है वो भी क्या है? वो भी विभु है विभु है। और अणु होने के कारण जीवात्मा का क्या है गुण है? वो आंशिक है क्योंकि भगवान जो है वो क्या है? विभिन्न अंश है। तो अणु अणु का मतलब है कि सब जो गुण भी होगा वो आंशिक गुण होगा जीवात्मा में। लेकिन भगवान में क्या है कि वो विभु है तो उनके अंदर असीमित गुण पाए जाते हैं अचिंत गुण स्वरूप। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूप गोविंद आदि पुरुषम तहम बजामे। तो इस कारण से क्या है कि भगवान को भौतिक गणना से या मेटीरियल कैलकुलेशन से नहीं समझा जा सकता। अचिंत शक्ति है भगवान की। अचिंत शक्ति होने का मतलब ही यही है। अचिंत शब्द का अर्थ ही यही है कि भौतिक इंद्रियों से आप भगवान को नहीं समझ सकते। श्री जी गोस्वामी का कहना यह है अचिंत का मतलब है इनकंसीवेबल का मतलब है कि आप इन भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते। अतः श्री कृष्ण नामानि लभवे द्राह्यम इंद्रिय सेवा मुखो ही जीवा लो स्वयं स्मृति हरा स्वयं एवं स्मृति अदा का मतलब है श्री रूप गोस्वामी ये बताना चाह रहे हैं, स्वयं कृष्ण ही हमें बताएंगे अपने बारे में, स्वयं कृष्ण ही हमें प्रेरित करेंगे और स्फुरित होंगी सारी लीलाएं। लीला स्मृति जिसको कहते हैं, लीला स्मृति, लाल की स्मृति, गुरुओं की स्मृति, लीलाओं की स्मृति, उनके धाम की स्मृति, तो ये सब स्मृति है और स्मृति करने वाले स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है। शुभताम से तथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय तस्तो ही अवध्राणी विधुरोति सुहृ सता। तो भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं जाके हमारे हृदय में करण के माध्यम से हृदय में जितने भी हमारी बैल जमी हुई है, गंदगी जमी हुई है, कृष्ण स्वयं उसकी सफाई करते हैं। और कृष्ण सफाई करके उसके बाद क्या करते हैं, अपने नाम को प्रकट करते हैं। शुद्ध नाम हमारे शुद्ध सत्व प्रकट होता है हमारे हृदय, और शुद्ध सत्व प्रकट होता है तो उस शुद्ध सत्व के आधार पर हम लोग भगवान के नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीलाओं को ठीक ठीक समझ पाते हैं तत्व से। और वो भी क्या है, भक्त की, शुद्ध भक्त की कृपा से और भगवान की कृपा से। ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता बीज का मतलब ही यही है कि वहां से शुरुआत हो गई, उस शुद्ध सत्व का जो बीज है वो वहां पर अर्पित कर दिया गया है आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा। अब उसको अंकुरित करने का कार्य हमारा, श्रवण आदि सही करे सेवचन, माली होया सही करे बीजारोपण। तो बीजारोपण कर दिया है, अब बीजारोपण को सेचन करना है श्रवण कीर्तन के माध्यम से। श्रवण कीर्तन के माध्यम से जब सेचन होगा तो धीरे धीरे इन गुणों का कीर्तन भी हम लोग कर पाएंगे। श्री जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ, भक्ति संदर्भ में ये वर्णन किया है, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं वही बात श्री जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं का स्मरण करना नाम उच्चारण के समय बहुत अच्छा है। कई बार हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं लीलाओं का स्मरण मत करो अभी, लेकिन लीलाओं का अगर स्मरण हो जाता है हरि नाम का उच्चारण करते हुए, ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई भयानक अपराध नहीं है, बल्कि लीलाओं का स्मरण ना होना और विषयों का स्मरण होना यह नाम अपराध है, यह नाम अपराध है। लीलाओं का स्मरण होना अपराध नहीं है, लेकिन हां लीलाओं का स्मरण हम कर नहीं पाते वो अलग बात है। लीलाओं का स्मरण होना आवश्यक है, गुरुओं का स्मरण होना आवश्यक है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं वो अलग बात है। इसलिए श्री गुरुजीव गोस्वामी ने और श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें बताया है, सीक्वेंस बताया है कि किस तरह से एक क्रम आगे बढ़ता है। इसलिए श्री जी गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, साउंड वाइब्रेशन, शब्द ध्वनि का श्रवण करना चाहिए हरि नाम के उच्चारण में। अगर हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, कहीं मन अगर भटकता है हरि नाम के उच्चारण में, तो हमें क्या करना चाहिए, उच्च स्वर से महामंत्र का उस समय उच्चारण करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो फिर तत्काल ही हमारा जो ध्यान है फिर से उस हरिनाम आ जाएगा। प्रभुपाद ने कहा कि जब भी आपको माया अटैक करे, माया अपने गुण दिखाने लगे और माया अपने हम दिखाने लगे या दिखाने लगी तो उस समय क्या करना चाहिए, माया का जब प्रभाव पड़ता है तो क्या करना चाहिए भक्त को। प्रभुपाद कहते हैं मैं जोर जोर से हरिनाम का उच्चारण करता हूं, माया भाग जाती है। उस उच्च स्वर के उच्चारण से जहां भी हरिनाम का उच्चारण उच्च स्वर से होगा वहां माया नहीं ठहर सकती, क्योंकि यह कलयुग का धर्म है। हेलो, यहां पे गुणों की बात की जा रही है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने बताया है कि हर तरह कई तरह के कीर्तन होते हैं, नाम कीर्तन होता है और गुण कीर्तन भी होता है, इसको गुण कीर्तन कहते हैं। गुणों का कीर्तन, या वो शुक्र गोस्वामी भगवान के गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, गुणों का कीर्तन किया जा रहा है। आप देखिए जो गुण है ये भौतिक गुण नहीं है, प्रकृति के अधीन नहीं है। भगवान गीता में बता रहे माया अध्यक्ष प्रकृति सुयते से चराचरम, नहीं भगवान ने बोला है कि माया अध्यक्ष प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में, अध्यक्षता का मतलब है, अक्ष का मतलब है आंखें, मेरी आंखों के नीचे, मेरे आंखों के नीचे है ये भौतिक प्रकृति। अगर आप भगवान की आंखों के नीचे है तो यानी कि भगवान प्रकृति से ऊपर खड़े हैं, प्रकृति के ऊपर है भगवान, महत तत्व भगवान के चरणों में। समाश्रित पद पल्लव प्रवम महत पदम पुण्य यशोमरा। प्रभुपाद कहते हैं महत पदम का मतलब है कि महत तत्व भगवान के चरणों में है, भगवान के चरणों का आश्रय लिया है महत तत्व ने। तो ये जो महत तत्व है या भौतिक प्रकृति है, क्योंकि भगवान के चरणों के नीचे है अध्यक्षता, तो भगवान उसके अधीन नहीं। अगर आप एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी अगर आपकी अपनी है, बहुत ही उदाहरण समझने के लिए, तो आप गाड़ी के अधीन नहीं है, गाड़ी के अधीन नहीं है, नहीं। लेकिन हो सकता है कि आप अगर गृहस्थ बन जाए तो फिर परिवार के अधीन हो जाते हैं आप, वो अलग बात है। लेकिन आप समझाने के लिए बता रहे हैं आपको कि अब गाड़ी में जब बैठते हैं तो आप गाड़ी के अधीन नहीं, यानी कि गाड़ी से अधिक क्षमता आप में है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी बनाने वाला व्यक्ति कौन है? आप है। आपने वो गाड़ी बनाई, यानी कि इंसान ने गाड़ी बनाई। अध्यक्षता, इसे सृष्टि का जो सृजन है, सएक्षता, बहुत बताया गया, सुंदर बताया गया छांदो उपनिषद में, यह वर्ण आता है सएक्षता बहु स्या प्रजाए। छांदो उपनिषद बताया गया है कि सएक्षता मतलब यह है कि भगवान जब बहुत अनेक बनना चाहते हैं, बहु स्या, भगवान जब अनेक बनना चाहते हैं तो क्या करते हैं, अपने दृष्टि पात्र से जो है भौतिक प्रकृति की सृष्टि कर देते हैं। दृष्टिपात स असुजाता, जैसे कि बाइबल में भी बताया गया कि लेट देयर बी क्रिएशन, गॉड डिजायर लेट देयर बी क्रिएशन, वही बात उपनिषद में बताई गई है। स असुजाता लेट देयर बी क्रिएशन, भगवान की इच्छा शक्ति, इच्छा से ही, क्योंकि इच्छा शक्ति से ही जो है ये सृष्टि हो गई, और ये इसको सृष्टि लीला कहते हैं। भगवान की भी लीला है, उनकी ये भी लीला है, भगवान जो भी करते हैं वो लीला है। तो बोले भाई लीला कैसे हो सकती है, ये भी लीला है भगवान के लिए। भगवान कोई भी कार्य करे वो लीला है, हम कोई भी कार्य करें वो लीला नहीं है, है ना, कुछ और है। तो इसलिए भगवान कोई भी कार्य करते हैं लीला मानी जाती है, इसलिए कि सृष्टि का कार्य भी जो है सृष्टि लीला बताया गया है। तो सृष्टि लीला जब की जाती है तो सृष्टि लीला करने वाला व्यक्ति जो है वो सृष्टि के गुणों के अधीन नहीं है। इसलिए जब ये बात कही गई यहां पे बहुश्या प्रजाए तद ऐक्षता, तो ये जो बताया गया छांदो उपनिषद में बताया जा रहा है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि भगवान जो है प्रकृति के अधीन नहीं है। जो भी भगवान से संबंधित है भगवान के लिए वो दिव्य है, भगवान के लिए वो दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम, या फिर एक और श्लोक आता है गीता में, देव ईश गुणमयी गुणमयी ममाया गुणत्या, दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड, प्रॉपर ने ट्रांसलेशन किया, दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मेडिटेशन। आप ये नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं कि प्रकृति के जो गुण है ये मेरे दिव्य गुण है, मेरा दिव्य प्रकृति, मेरी दिव्य प्रकृति है, प्रकृति के तीन गुण। आप कह रहे हैं कि मैं माया में हूं, लेकिन मैं माया में नहीं हूं, ये जो गुण है मैं मुझे दिखाई दे रही है सब दिव्य है, नहीं, ये भगवान ही बता सकते हैं। भगवान कह रहे हैं देवेश गुणमयी मऊ माया दुरतिया, तो भगवान के लिए जो ये गुण है, भौतिक प्रकृति हो या आध्यात्मिक हो, भगवान के लिए सब कुछ दिव्य है। बिजली भेजने वाला जो है ठंडा गर्म करता वो आपका कार्य है, लेकिन जो बिजली घर में बैठा हुआ है, पावर हाउस में जो बैठा व्यक्ति है, वो तो बिजली भेज रहा है, उसके लिए तो बिजली ही है। सर्दी गर्मी करना है वो का हीट कन्वर्टर जो है कन्वर्शन करना, उसको ठंडे में करना गर्मी में करना, वो आपकी समस्या है, उसमें आपके लिए स्वतंत्रता है। लेकिन भगवान जो है इसी तरह से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं इस सृष्टि की रचना करके। जैसे गाय है, गाय का उदाहरण देखिए बड़ा अच्छा है, गाय दूध देती है और गाय गोबर भी देती है, लेकिन गाय कभी गोबर नहीं खाई, दूध अगर आप गाय को देंगे दूध खा ले, दूध पी लेती गाय, दूध पी लेती गाय, लेकिन कभी गोबर नहीं खाएगी गाय, हालांकि गोबर भी जो है गाय से निकला है। तो इसी तरह से, इसलिए कई बार बोला जाता है कि इंफीरियर एनर्जी है, ये मेटीरियल एनर्जी को क्या बताया गया है, अपरा प्रकृति बताया गया है, और जो उनकी अपनी स्वरूप शक्ति है वो परा प्रकृति है ना। तो परा प्रकृति यानी कि मतलब यह है जो गुण है परा प्रकृति के, वो भी परा ही है, वो भी जो है वो गुणों के अधीन नहीं है, दिव्य गुण है भगवान के। और यहां पर बहुत सुंदर वर्णन किया जा रहा है, यद्यपि भगवान के विविध अवतारों के महान कार्य दिव्य गुणों का अद्भुत विधि से वर्णन किया जाता है, किंतु कभी कभी हम उन्हें नहीं समझ पाते, किंतु भगवान विष्णु के लिए सब कुछ संभव है। यदि कोई भगवान के सारे परमाणुओं को गिन सके तो वह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है, किंतु ऐसा कर पाना संभव नहीं है, कोई भी भगवान के दिव्य गुणों को नहीं गिन सकता। यही बात आप देखेंगे भागवत के दशम स्कंद में अध्याय 14 में ब्रह्मा जी भी लगभग यही बात बता रहे हैं, बहुत सुंदर बात बताई उन्होंने। समय के साथ विद्वान दार्शनिक या विज्ञानी पृथ्वी के सारे परमाणु हिम के कण या शायद सूर्य नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों की गणना करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में निहित असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सके। ऐसे भगवान समस्त जीवात्मा के कल्याण के लिए धरती पर अवतरित हुए। तो भगवान के गुणों का समझना ही बहुत ही कठिन कार्य है। एक कवि ने बताया है कि अगर इस समुद्र को, सागर को स्याही बना लिया जाए और आकाश को कागज बना लिया जाए और स्याही के माध्यम से और वृक्षों को कलम बना लिया जाए, एक वृक्षों को कलम बना लिया जाए और समुद्र को स्याही बना लिया जाए और उसके सहारे हम लोग आकाश में भगवान के गुणों का वर्णन करना शुरू कर दें और लिखना शुरू कर दें, तभी वो वर्णन पूरा नहीं होगा। तो ये अचिंत शक्ति भगवान की है और भगवान का जो गुण है, भगवान के गुणों का स्मरण करना ये बहुत अद्भुत बात है। तो हमने बताया सबसे पहले शब्द ध्वनि, श्रील जी गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ बताया कि शब्द ध्वनि का हम लोग श्रवण करते हैं जो कि दिव्य है। भगवान का नाम जो है दिव्य, उसकी शब्द ध्वनि भी दिव्य है। और इस तरह से जब धीरे धीरे जब पवित्र हो जाते हैं तो फिर हम लोग भगवान के रूप का स्मरण कर सकते हैं और भगवान के रूप का जो स्मरण होता है धीरे धीरे फिर हम उनके गुणों का स्मरण करते हैं, फिर उनकी लीलाओं का स्मरण कर पाते हैं। यह क्रम है, ऐसा श्री गोस्वामी बता रहे, ये सीक्वेंस है। लेकिन अगर कोई हमने बताया कि जब के समय अगर भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है कोई, तो कोई अपराध नहीं है बल्कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें कोई अटूटी नहीं है, कोई दोष नहीं है। इसलिए भगवान ने ये सारी लीलाएं प्रकट की है पृथ्वी, अपने गुणों को प्रकट किया है। इस दशम स्कंध के इसी श्लोक पे जो हमने पढ़ा अभी, इसमें सनातन गोस्वामी ने बहुत सुंदर टीका दी है और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव है। इस ब्रह्मांड में क्योंकि असंख्य जीव है, भगवान भी इसी कारण से असंख्य गुण प्रकट करते हैं। उन असंख्य जीवों के लिए भगवान असंख्य अनंत अनंत कोटि जीवात्माओं के लिए भगवान असंख्य गुण प्रकट कर रहे हैं, किसी को संख्या नहीं। और इस कारण से प्रत्येक जीव के साथ जो है भगवान का एक विशेष आदान प्रदान है और उस विशेष जीव के लिए, उस विशेष जीव के लिए भगवान जो है एक विशेष गुण प्रकट करते हैं। ये भगवान की सर्वव्यापकता है ना, कि भगवान के देखिए कितने महान है। प्रत्येक जीव के साथ उनका एक व्यक्तिगत आदान प्रदान है और उस जीव के लिए भगवान एक विशेष गुण प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान के इतने सारे नाम है, इतने सारे नाम है उनके गुणों के आधार पर, है ना, गोपी जन वल्लभ, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, उनके भक्तों के साथ उनका नाम बुलाया जाता है, उनके गुणों को देखकर, उनके कार्यों को देखकर। तो इस तरह से अलग अलग वर्ण किया गया है। और श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि हां यह हुआ कि भगवान संकर्षण ने पृथ्वी में जितने भी अणु हैं और जितने भी मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, मॉलिक्यूल्स, परमाणु नहीं, खैर आप समझते हैं आपको, मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए, ये जो है भगवान संकर्षण इसकी गणना कर ली है। भगवान संकर्षण जैसे जो महापुरुष है उन्होंने इसकी गणना कर ली है, क्योंकि यह संभव है, उन्होंने कर लिया है, अणु का भी कर लिया, परमाणु का कर लिया, मॉलिक्यूल्स का कर लिया, पृथ्वी में ब्रह्मांड में जितने भी हैं उस सब की गणना भगवान संकर्षण ने कर ली है। लेकिन वो भगवान संकर्षण जिन्होंने ये सारी गणना कर ली है, वो अपने फलों से अनंत शेष के रूप में अपने फलों से भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं अनंत काल से, लेकिन आज तक वो गुणानुवाद जो है वो पूरा नहीं हो पाया। जितना गुण वो गुणों की व्याख्या भगवान अनंत शेष करते हैं, उन्हें उतना ही उन गुणों का विस्तार होता जाता है। भगवान के गुणों का विस्तार होता ही रहता है, उनके सुंदरता का विस्तार होता रहता है, सौंदर्य का विस्तार होता रहता है। इसलिए बताया गया नव यौवनम, नव यौवनम का मतलब पूरा यौवन नहीं है, यौवनम का मतलब पूरे यौवन की अवस्था नहीं है, नव यौवन का मतलब नए नए युवक बने हैं, नए नए युवक बने हैं। इसलिए भगवान के बारे में बताया जाता है कि जब भी वो दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी नए नए युवक बने। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो नव यौवन का मतलब यह है कि ऐसा दिखता है राधिकरमन जी को देखकर कि अभी भी युवक बने हैं, अभी अभी उन्होंने यूथ एंटर किया है, ये अवस्था में अभी प्रवेश किए हैं, हमेशा ऐसे ही दिखेंगे कृष्ण। इसलिए ये जो सुंदरता का वर्णन इसलिए हमारे शास्त्र में हुआ है, भगवान के गुणों का वर्णन हुआ है। अब देखिए भगवान के तो जैसे अनंत कोटि गुण है, और भक्ति रसाल सुनो में लेकिन श्री रूप गोस्वामी ने 64 दिव्य गुणों का वर्णन किया है, और 64 दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि इसमें से जो 60 दिव्य गुण है वो नारायण में पाए जाते हैं, नारायण में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे चार विशेष गुण है जो नारायण में भी नहीं पाए जाते हैं। वो नारायण वो चार गुण कौन कौन से है, पहला बताया है श्री रूप गोस्वामी ने लीला माधुर्य। लीला माधुर्य के बारे में भक्ति रसाल सुनो में श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि एक भक्त विचार कर रहा है, एक भक्त कह रहा है मैं नारायण को जानता हूं जो कि लक्ष्मी के पति हैं, और मैं उन सभी अवतारों के बारे में जानता हूं, उन सभी अवतारों की लीलाएं हैं मेरे मन में बसी हुई हैं, उन सभी अवतारों के बारे में जानता हूं, उन अवतारों के बारे में मैंने सुना भी है, श्रवण भी किया है, उनके गुणों के बारे में सुना है, उनकी लीलाओं के बारे में सुना है, लेकिन आपको बताऊं जब मैं कृष्ण की रासलीला देखता हूं तो अद्भुत दिव्य आनंद मेरे मन में प्रकट होता है, मेरे हृदय में प्रकट होता है। उस रासलीला को देखकर मैं फिर अपने आप को संभाल नहीं पाता, इसलिए जब रासलीला हुई तो देवी देवता जो है चकित होकर भगवान कृष्ण की इस रासलीला को देखकर, ऐसी रासलीला जो है आज तक देखी नहीं किसी ने, ब्रह्मा जी शिव जी देवी देवता सब आके देख रहे हैं, अर्धरात्रि में शरद पूर्णिमा के दिन भगवान रासलीला कर रहे हैं, इस रासलीला देखकर सबके सब चकित हो गए। और उसके बाद फिर दूसरा बता रहे हैं प्रेम माधुर्य। प्रेम माधुर्य में भगवान कृष्ण अकेले नहीं है, भगवान कृष्ण जो कृष्ण का रूप गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति रसाल सुनो में कि कृष्ण जो शब्द है ये कृष्ण जब उच्चारण किया जाता है, कृष्ण नाम का उच्चारण किया जाता है तो कृष्ण अकेले नहीं है, कृष्ण अकेले नहीं है, कृष्ण का मतलब है उनका नाम, उनका गुण, उनका रूप, उनका यश, उनके मित्र और उनसे संबंधित जो सामग्री है, पैराफेरेलिया है, और उनके जो पार्षद है, जो परिकर है, ग्वाले है माता यशोदा, नंद महाराज, और गाय है ब्रज की गाय है, और वृक्ष है, पौधे है यमुना जी है, गोवर्धन है, ये सब कृष्ण से ही जुड़े हुए हैं। कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हुए जब वो शुद्ध नाम का उच्चारण करता है ये सब के सब प्रकट हो जाते हैं, अलग नहीं दिखाई देते कृष्ण। एक बार किसी ने कृष्ण का पेंटिंग बनाया था, और कृष्ण का पेंटिंग बनाया तो प्रभुपाद ने कहा ये तो बिल्कुल प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि कृष्ण कभी अकेले नहीं होते हैं, आपने कृष्ण को अकेला क्यों दिखा दिया। तो कृष्ण कभी अकेले नहीं है, महाप्रभु कभी अकेले नहीं है, चैतन्य महाप्रभु अकेले कभी संकीर्तन में नहीं जाते, चैतन्य महाप्रभु को कई बार अकेला पेंटिंग में देखा है, उसको कोई है साथ में, महाप्रभु अकेले नृत्य कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। और गंभीरा में भी वाला महाप्रभु अकेले नहीं थे, वहां पे भी हमारी सरू थामोदर रामानंद राय जो है उनको गीत गोविंद और जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद से चंडीदास के विद्यापति के गीत सुनाया करते थे चैतन्य महाप्रभु को गंभीरा में भी, तो वहां पर महाप्रभु भी अकेले नहीं है। तो राजा कभी अकेला नहीं जाता है, राजा हमेशा प्रजा के साथ ही जाता है, प्रजा पहले पहुंच जाती है या उसके सैनिक पहले पहुंच, सैनिक साथ में चल पड़ते हैं, मंत्री साथ में चल पड़ते हैं, तो राजा कभी अकेला नहीं होता है, इसलिए कृष्ण कभी अकेले नहीं होते हैं। तो इसमें जैसे गोपी गीत में बताया गया अटति यद भवान त्रुटि युगायते त्वाम भाष्यता कुटिल कुन्तला श्रीमुखं च ते जडोदीक्षता पक्ष्मकेदृश। अब कृष्ण सुबह सुबह निकल गए प्रातःकाल, जब प्रातःकाल हुआ भोर का समय हुआ तो भगवान कृष्ण गोचारण लीला के लिए निकल जाते हैं, गोचारण के लिए वन में निकल जाते हैं, बलराम जी साथ में है, ग्वाले भी साथ में है, लाखों लाखों गायों को लेकर कृष्ण गोचारण लीला के लिए जा रहे हैं। और उस समय गोपियां क्या सोच रही है, ये उनके देखिए ये जो प्रेम माधुर्य का मतलब उनके प्रेमी भक्तों के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि ये गुण है कृष्ण का कि उनके जो भक्त है वो प्रेमी भक्त है, कैसे प्रेमी भक्त है इसका वर्णन हो रहा है इस श्लोक में। तो गोपियों का चिंतन क्या है, गोपियों को एक क्षण जो है एक युग के बराबर या लगभग 12 साल 12 वर्ष के तरह लग रहा है एक क्षण। अटति यद भवान अनि कारणम त्रुटि युगायत, एक जैसे कि चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्ट के में क्या बोल रहे हैं, युगायतम निमेशेन न चक्षुषा प्राणिषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। यही विरह यहां पर गोपियां प्रकट कर रही है, कृष्ण जो है गोचारण लीला के लिए गए हैं, कब आएंगे वापस, कब आएंगे वापस, कब आएंगे वापस, गोपियां इंतजार कर रही हैं। और उसके बाद जब सूर्यास्त लगभग होने वाला है तो उस समय कृष्ण को देखते हैं, दूर से देखते हैं, कृष्ण के पूरे दिव्य शरीर में धूल लगी हुई है ब्रज की, और दूर से कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, धूल भर गया है उनके दिव्य शरीर में, और दूर से मोर पंख दिखाई दे रहा है, पीतांबर वस्त्र दिखाई दे रहा है, श्याम वर्ण के कृष्ण बहुत नजदीक आ रहे हैं अपने वंशी को बजाते हुए गायों के साथ। कितना सुंदर दृश्य है, दीवारों के ऊपर चढ़ जाती है गोपियां और कहीं भी जा भी जगह मिलती है गोपियों की, जैसे ही उनको संकेत मिलता है कि कृष्ण वापस लौट रहे हैं, उत्कंठा उनमें होती है, उत्कंठा कंठ को ऊपर उठाते हुए और बड़ी बड़ी नजरों से देखते हैं कि देखो कृष्ण वापस आ रहे हैं, कृष्ण वापस आ रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण को देखते हैं तो इतने आकर्षक लगते हैं, कृष्ण को निरंतर देखना चाहते हैं, निरंतर कृष्ण को देखना चाहते हैं, एक क्षण भी जो है व्यर्थ नहीं करवाना चाहते। अव्यर्थ कालत्वम का अर्थ यह है, अव्यर्थ कालत्वम, प्रेमी भक्त क्या है, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाता है, एक क्षण भी वो कृष्ण के बगैर नहीं रह सकता है, उनको हमेशा देखना चाहता है, हमेशा सुनना चाहता है कृष्ण के बारे में, हमेशा कृष्ण को पीना चाहता है। पीवत भागतम रसवाल मुहूर हो रसी को भूमि भाव का, तो कृष्ण को पीते हैं, कृष्ण कथा को पीते हैं ऐसे रसिक जन, ऐसी गोपियां। तो वो गोपियां जो है कृष्ण को देखती हैं तो व्याकुलता उनकी बढ़ जाती है, पलके उनकी चपक रही है, ब्रह्मा जी को दोष देती है गोपियां, बोलती है कैसा है ये सृष्टि करता, कैसे सृष्टि कर दी है, कैसे पलके बना दिए, तो सृष्टि करना भी नहीं आता है, बार बार ये पलके झपकती रहती है, हमारी पलके भी झपकती है, भागवतम का क्षण है क्योंकि हमें कोई विरह हो नहीं रहा है, विरह हो रहा है महा प्रसाद गोविंदे, या वो भी अच्छा ही है लेकिन माया से विरह हो रहा है, माया के गुणों का स्मरण हो रहा है, माया रूप का चिंतन हो रहा है, और इसलिए हम लोग निद्रा देवी को आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं, हमारे पलके झपकते नहीं है बल्कि आंखें पूरी तरह बंद हो जाती क्योंकि विरह है ही नहीं, विरह होगा तभी तो पलकों को दोष देंगे हम लोग। तो यहां गोपियां दोष देंगी, आसक्ति उनका अनुराग देखिए, उनका अनुराग देखिए, उनका डीप अटैचमेंट देखिए कृष्ण से, वो एक क्षण भी जो है कृष्ण के बगैर नहीं रह सकती, जीवित नहीं रह सकती, जीवित नहीं रह सकती है कृष्ण के। चैतन्य महाप्रभु के छाती को फाड़ने लगे, गदाधर पंडित कहते हैं क्या कर रहे हैं आप, आपकी छाती से खून निकल रहा है, कोथा गिला, कृष्ण कहां गए, महाप्रभु रो रहे हैं, बार बार कंदन कर रहे हैं, गदाधर पंडित को सांत्वना दे रहे हैं, पैसिफाई कर रहे हैं। और यही हालत चैतन्य महाप्रभु की गंभीरा में हुई, गंभीरा में कभी कभी जो है चैतन्य महाप्रभु दीवारों के साथ अपने किसको क्या कहते हैं टूटी तोड़ी तोड़ी को जो है दीवार के साथ वो रगड़ते थे और खून निकलता था उनके चैतन्य महाप्रभु के शरीर से, लथपथ हो गया पूरा वो दीवार, खून से लथपथ हो गया क्योंकि विरह उसे सहा नहीं जा रहा है, दिव्य उन्माद प्रकट किया श्री चैतन्य महाप्रभु, पागलपन। राजवाणी इसलिए भ्रमर से बात कर रही है, भ्रमर को गाली दे रही है, भ्रमर को दोष दे रही है, कैसा पागलपन है देखिए, कृष्ण के निरंतर उनका गुणों का चिंतन, उनके रूप का चिंतन, उनकी लीलाओं का स्मरण निरंतर हो रहा है, कीर्तनीय सदा हरि, और सो कैसे सकते हैं, कैसे सो सकते हैं हम लोग बताइए, अगर कृष्ण इतने आकर्षक है तो नींद क्यों आ रही है फिर, इसका मतलब रुचि नहीं है, जिसको रुचि आ गई नाम में, गुणों में रुचि आ गई, भगवान की लीला में रुचि आ गई है, वो सो ही नहीं सकता है, वो खा ही नहीं सकता है, निद्रा देवी कभी प्रवेश कर ही नहीं सकती, निद्रा देवी भी भक्त बन जाएगी, निद्रा देवी भी हरिनाम लेने लगेगी, वो भी जाग जाएंगे, उनका नाम जो है गलत साबित हो जाएगा, साक्षात माया देवी आ रही है नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास, हरिदास ठाकुर 300,000 नाम ले रहे हैं, माया देवी बोल रही है आ रही है प्रस्ताव रखनी बार बार प्रमोशन, लेकिन हरिदास ठाकुर बोलते हैं
ऐसा है संख्या मेरी पूरी नहीं हुई, आप कल आ सकते हैं, प्लीज डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा बिजी हूं, आप कल आइए। जैसे वहां पर देखा बॉम्बे में झूठ टेम्पल में सुना गिरिराज महाराज जप कर रहे थे और एक बहुत बड़ा आदमी प्रातः काल में उनसे मिलने के लिए लगभग 6 बजे इंडस्ट्रीज था कोई, उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू मीट द टेम्पल प्रेसिडेंट। तो उस समय महाराज सन्यासी नहीं थे, तो उस समय प्रभु लोकनाथ महाराज भी वहां, लोकनाथ महाराज भी सन्यासी नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु somebody has come to see you, big man. You can tell him that I am busy now. You don't see I am busy. तो लोकनाथ महाराज सोने लगे क्या बिजी है महाराज, तो जब कर रहे हैं। तो फिर महाराज से पूछा कि महाराज आप कह रहे थे आप बिजी, मैं तो देखा जब कर रहे। और फिर गिरिराज महाराज कहते यस आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद कृष्ण, उस कृष्ण के साथ मेरा अपॉइंटमेंट था। क्या वो इंडस्ट्रियल कृष्ण से बड़ा है बताइए? तो इसलिए ये है आकर्षण, दिस इज द अट्रैक्शन, दिस इज द डीप अटैचमेंट वन हैज फॉर द क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड, फॉर द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, फॉर द पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड। जब अनुराग इस प्रकार का उत्पन्न हो जाता है तो हम इस संसार के नहीं रहते हैं। तो इसलिए गोपियां जो है यहां पर दोष दे रही है, इन्हें गोपियां प्रेमी भक्त हैं, कृष्ण की प्रेमी भक्त, उनके सखा नंद महाराज उद्धव जी बोल रहे हैं उद्धव संदेश में, नंद महाराज को समझा रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं कि कृष्ण आपका बालक है? नो, ही परम भगवान, परम ब्रह्म, आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण है, वो सभी अवतार उनसे निकले हैं। उद्धव जी उनको कन्विंस कर रहे हैं ज्ञान के धरातल पर। नंद महाराज कहते हैं कि मैं सोच भरकर लगा था कि तुम आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, लेकिन मुझे लगता है आप एक नंबर के बेवकूफ हैं। कृष्ण वाला लड़का है, ही माय सन, तो ये अटैचमेंट है उनका, वात्सल्य प्रेम। अनुकूल कृष्णालोशीलनम भक्ति उत्तम अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान करवानी अनावृतम। रूप गोस्वामी कह रहे हैं ज्ञान का कोई अवरण नहीं है वहां पे, ना भौतिक ज्ञान का ना आध्यात्मिक ज्ञान का, कोई ज्ञान का अवरण नहीं है वहां पे। ब्रज का मतलब यह है, ब्रज का मतलब, ब्रजवासियों का मतलब यह है, वहां किसी तरह का आवरण नहीं है, ना ज्ञान का आवरण है ना कर्म का आवरण है, सब कुछ खुला हुआ है, ओपन हाउस, एवरीथिंग इज ओपन, नो क्रूकडनेस, नो डबल स्टैंडर्ड, नो ड्यूप्लिसिटी, सब कुछ ओपन है, सिंपल हार्ट ब्रजवासी, दे आर ऑलवेज ग्लोरिफाइंग कृष्ण, ये है उनके प्रेमी भक्त। तो दिस वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। और उसके बाद वेणु माधुरी के बारे में बताया गया है, विविध गोप चरणेश विदग्धो वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा तव सुतः सती यदाधर बिंबे दत वेणुर अनय स्वर जाति। ये भागवत के दशम स्कंध का 35वें अध्याय का 14 नंबर और 15 नंबर श्लोक है। शरणस्तुपधार सुरेश शक्र सर्व परमेष्ठी पुरोगः कव्ये आनंत कंधर चित्ता कश्मलम ययूर अनिश्चित तत्व। तो गोपियां माता यशोदा से कह रही है कि आपका जब पुत्र कन्हैया कृष्ण जब बंशी बजाता है बांसुरी बजाता है तो जानते क्या होता है? महादेव शिव ब्रह्मा और इंद्र बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े पंडित महापुरुष ये सब के सब मोहित हो जाते हैं उनके वेणु वादन से। वेणु वादन इतना आकर्षक है इतना प्रभावशाली है कि अर्धरात्रि में सारी गोपियां निकल आती है अपने घर से। उनको लोकलाज की चिंता नहीं है, उनको परिवार की चिंता नहीं है, उनको यश की चिंता नहीं है, उनको तो कृष्ण की चिंता है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज आम ताम सर्व पाप भेद्य मोक्ष स्वामी मां शुजा। मायावादी भी सभी धर्मों को त्यागते हैं लेकिन कृष्ण की शरण नहीं जाते हैं। इस श्लोक में इसलिए यह शब्द बड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दूसरी पंक्ति माम एकम शरणम व्रज, सर्व धर्मान परित्यज्य तो कोई भी कर सकता है, मायावादी भी सभी धर्मों को त्याग कर एक स्थान में बैठ जाते हैं। सोहम सोहम या हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूं, वेरी गुड, पर व्हाट नेक्स्ट? भगवान कह रहे मौम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को त्याग कर गोपियों ने क्या किया? उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और चली गई सीधा अर्धरात्रि में। आप जाएंगे क्या अर्धरात्रि में वृंदावन में जंगल के भीतर कृष्ण की वंशी सुनते ही आप जाएंगे? हम सब जाएंगे क्या? कितना भय है हमें संसार से, कितना भय है हमें अपने आप से, कितना भय है हमें परिवार से, कितना भय है हमें समाज से, हम क्यों जाएंगे कृष्ण के पास। लेकिन कृष्ण को ये कहना नहीं पड़ता श्लोक गीता का, अर्जुन को तो भगवान ने बताया, क्योंकि हम सब नालायक हैं, हम सरलत होते नहीं कृष्ण के, स्वाभाविक नहीं है हमारे पास कृष्ण के लिए जाना। इसलिए श्री भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु ने रावण राय के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया कि यह जीवन का लक्ष्य जबरदस्ती है। कृष्ण बोल रहे हैं कि यार तुम नालायक हो, आ जाओ मेरे पास, सभी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के। उनको कहना पड़ रहा है अरे तो प्रेम कहां रहा, उसमें तो भय है। और कृष्ण से प्रेम का मतलब है स्वाभाविक होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए हमारे लिए कृष्ण के पास जाना। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मंगल आरती उठो। स्वाभाविक कैसे, जैसे प्रसाद के लिए हम स्वाभाविक होते हैं, नेचुरल स्पॉन्टेनियस। इसलिए प्रसाद का ग्रहण करना वैदिक साधना में नहीं आता, स्वाभाविक है वाले प्रसाद के लिए आकर्षण, स्वाभाविक नेचुरल स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन फॉर महाप्रसादम। नौ बजे अपने आप ही स्वतः ही हमारे मुख से निकलता है महाप्रसाद गोविंद। तो इसी तरह से जब कृष्ण की वंशिक ध्वनि सुनी गोपियों ने, अर्धरात्रि को गोपियां निकल पड़ी और एक एक गोपी को कृष्ण की उस वंशिक ध्वनि का क्या हो रहा था, श्रवण हो रहा था, सुन पा रही थी। ऐसा लग रहा था एक एक स्वर में जो है एक विशेष गोपी को कृष्ण बुला रहे हैं और वो गोपी घर छोड़ के जा रहे हैं। तो ये जो शब्द ध्वनि जो वेणु वादन है, अब शिव जी क्या कर रहे हैं, शिव जी जो है वो भी रुक गए। उनका जो डमरू है, डमरू डिम 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 उनका डमरू है, और डमरू बजाना उन्होंने बंद कर दिया महादेव ने। और कुमार चार कुमार जो ध्यान की मुद्रा में बैठे थे उनका ध्यान भंग हो गया। भगवान अनंत शेष जिन्होंने अपने फलों में जो है ब्रह्मांड को धारण किया हुआ था, बड़ी शांति से उठा के रखा हुआ था, जैसे सरसों का बीज उनके सर पर रखा हुआ है, उनके मन में भी हलचल हो गई जब उन्होंने वेणु वादन सुना कृष्ण का। ब्रह्मा जी भी चकित हो गए, क्या वेणु वादन है। इसलिए वेणु वादन, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस वेणु वादन को हम सुन सकते हैं कहां, इस पृथ्वी में भी, जब हम संकीर्तन में भाग ले रहे। संकीर्तन जब होता है तो समझ लीजिए भगवान कृष्ण का वेणु वादन ही। तो ये वेणु माधुर्य है, भगवान श्री नारायण, नारायण कभी वेणु वादन नहीं करते, उनके पास वेणु है ही नहीं। द्वारकाधीश के पास भी वेणु वादन नहीं है, द्वारका में वेणु नहीं बजाते हैं, अजानते हैं द्वारका में कभी होता है वेणु नहीं है वेणु उनके पास। बात वो ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, वह मोर भक्त भी नहीं है। तो वेणु को धारण करना, वंशी को धारण करना, मुरली को धारण करना, ये कृष्ण करते हैं श्रीधाम वृंदावन में अपने मूल रूप में स्वयं भगवान। तो ये कृष्ण के वेणु वादन के बारे में और कृष्ण की सुंदरता के बारे में भी वर्ण है श्रीमद भागवत में। यं मर्तया लीलोपैकं स्वयोगा माया बलं दर्शयता गृहीतं विश्वापरं स्वस्य च शोभागार्धे परम पदं भूषण भूषणांगम। बहुत सुंदर बताया गया है, इस श्लोक में बताया जा रहा है जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से तुलसी दल, क्षमा करिए, खैर इसमें जो मेन बात बताई गई है कि आभूषण, आभूषण को भी जो है वो सौंदर्य प्रदान कर रहे हैं, सुंदरता जो है आभूषणों की बढ़ रही है। जैसे गोपियां जो है वो शिकायत करती है माता यशोदा से, माता यशोदा से गोपियां कहती है कि आपका जो कृष्ण है हमारे घर में आता है माखन चोरी करने के लिए, माखन चोरी करता है आके, हमें बड़ा तंग करता है। लेकिन जानते हैं वो गोपियां ये भी कहते हैं कि हां उसके आपने शरीर में आभूषण पहनाए हैं, रोशनी नहीं भी होती है तो अंधेरे में भी उन आभूषणों के प्रकाश के कारण उसको सब कुछ दिखाई देता है। या फिर गोपियां कहती हैं लेकिन आभूषण अगर के दिव्य शरीर में नहीं भी है तब भी कोई समस्या नहीं है, उनके दिव्य शरीर से जो कांति निकल रही है उस कांति से ही सब कुछ उनको दिखाई देता है। लेकिन एक बात कहें, हम सब इंतजार करते हैं कि कृष्ण आएंगे एक दिन हमारे घर में भी आके माखन चोरी करेंगे। जैसे ब्राह्मण लोग बोलते हैं जगन्नाथ मिश्र को, कि कुछ भी कहो, निमाई कितना भी हमें तंग करे, कितना भी अपराध करे, हमारे हृदय में हमेशा बसा रहेगा। ये जो निमाई हम इसका इंतजार करेंगे कि प्रत्येक दिन हमारे घर में आए, हमें बार बार तंग करे। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जगन्नाथ मिश्र कि आपके घर में साक्षात श्री कृष्ण नारायण प्रकट हुए हैं। जगन्नाथ मिश्र सुनने लगे, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज दिस। तो जगन्नाथ मिश्र भी कहते हैं, देखिए साक्षात नारायण हमारे घर में शायद प्रकट हुए हैं, कृष्ण साक्षात प्रकट हुए हैं। लेकिन जब निमाई जगन्नाथ मिश्र के गोद में आकर बैठ जाते हैं तो जगन्नाथ मिश्र के हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ता है, भूल जाते हैं कि निमाई भगवान है। क्षण भर का उनको सिर्फ एक क्षण भर विस्मृति होती है, लेकिन वात्सल्य भाव जो है हमेशा उनके लिए भारी पड़ता है, वात्सल्य प्रेम हमेशा उमड़ पड़ता है। तो परम पदम भूषण भूषणांगम, यानी कि उन आभूषणों की भी सुंदरता बढ़ती है। राधिका रमन जी को जब आभूषण पहनाते हैं तो उन आभूषणों की सुंदरता बढ़ जाती है, उस कुंडल की सुंदरता बढ़ जाती है। दामोदर लीला में हम देखते हैं कि हम शुरू में जहां पर वर्णन किया है, सनातन गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं इस हरिभक्ति लास में, दामोदर अष्टकम दिया गया है उसमें क्या बताया गया, नमामि नमामिश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमान। लसत कुंडलम, उनका जो कुंडल है वो कुंडल भी जो है उसकी भी शोभा बढ़ रही है, क्योंकि कृष्ण के कर्ण में वो लगा हुआ है। कुंडल की शोभा बढ़ाई है भगवान ने, कुंडल की शोभा बढ़ाई भगवान ने, वो कुंडल को जब धारण किया है, आभूषणों की सुंदरता बढ़ाई है कृष्ण, उन वस्तुओं की, वो जो श्रृंगार उन्होंने किया है, उन वस्त्रों की शोभा, उनकी सुंदरता बढ़ रही है, जैसे वो कृष्ण के शरीर में डाला जाता है। नहीं, हमारा तो केस अलग है ना, हमें जब तक वस्त्र नहीं अच्छे अच्छे पहनाए जाएंगे, केश नहीं होंगे लावण्य केश धारणम, और खासकर कलयुग में तो सुंदरता की पहचान बालों से की जाती है, जो बाल नहीं है वो दिखाई देते नहीं है संसार में। लावण्य केश धारणम, बहुत कुछ मेकअप लगाना पड़ता है, प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है, फेस लिफ्टिंग करते हैं, फेस लिफ्टिंग, फेस लिफ्टिंग मतलब एज के बाद ये चेहरा नीचे उतर आता है ऐसे, तो फेस लिफ्टिंग का मतलब है इसको उठाया जाता है, ऐसे उठाया, तो ऐसे जब उठाया जाता है और यहां पे उसको जोड़ देते हैं, सो यू लुक हियर, जैसे हमारे पांच जने पर यंग लग रहे हैं, यंग है लग नहीं रहे, तो जब ऐसे खींचते हैं सो यू लुक हियर। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रभुपाद से एक बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि प्रभुपाद हमारा हाथ देख सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, वी डिपेंड ऑन कृष्णा, हम कृष्ण के ऊपर निर्भर रहते हैं, हम ज्योतिषियों के ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करते, ज्योतिष के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, हम कृष्ण के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज स्वामी जी प्लीज सी माय हैंड, यू नो प्लीज प्लीज आई वांट टू शो माय हैंड टू यू। प्रभुपाद ने बड़े ही ड्रामेटिक वे में प्रभुपाद ने कहा ठीक है, प्रभुपाद ने लैंप लाइट जलाया वहां पे, और लैंप लाइट जला गया, प्रभुपाद ने हाथ देखा, बहुत गंभीरता से देखा, और देखते रहे जैसे हाथ देखते ना ऐसे ऐसे हाथ प्रभुपाद देखते रहे। प्रभुपाद कहते वेरी वेरी बैड, बहुत बुरा है, वेरी वेरी बैड। तो वॉट, उसको बड़ा झटका लगा, वो बेचारा घबरा गया कि स्वामी जी क्या बोलने वाले, वेरी वेरी बैड, बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ। तो सुंदरता संसार में है ही नहीं, सुंदरता के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, प्रातः काल में उठ के स्नान करना पड़ता है, दांत साफ करना पड़ता है, आंखों को साफ करना पड़ता है, पूरा शरीर साफ करना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता है, कई लोग क्या क्या और भी सारे सामग्रियों का उपयोग करते हैं और ज्यादा शरीर को सुंदर बनाने के लिए, तब हम दिखाई देने लायक बनते हैं समाज में। एक बार किसी ने बोला, प्रभुपाद एक बार आदमी आगे बोला गुड मॉर्निंग स्वामी जी, प्रभुपाद कहा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, प्रभुपाद फिर साइड में बोले डिवोटी इज समथिंग विच इज हॉरिबल हैज नॉट हैपेंड येट, दैट्स द मीनिंग ऑफ गुड मॉर्निंग। प्रभुपाद गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि बहुत जो बुरा होने वाला है अभी तक हुआ नहीं है तुम्हारे साथ, गुड मॉर्निंग का मतलब यह है मीटिंगली। प्रभुपाद फिर बोलते हैं गुड मॉर्निंग मीन्स मंगल आरती, दैट इज गुड मॉर्निंग, दैट इज रियल गुड मॉर्निंग, ऑलवेज ऑस्पिशियस। तो इसलिए भौतिक संसार की सुंदरता कभी नहीं रहती है, सुंदरता घटती रहती है, और ये जो सौंदर्य है भौतिक शरीर की जो सुंदरता है उसका आधार भी ये आत्मा है, क्योंकि आत्मा सुंदर है, आत्मा का सौंदर्य है, इस कारण से ये थोड़ा बहुत शरीर सुंदर दिखाई पड़ता है। लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो ये शरीर देखने लायक नहीं होता, उसको जला दिया जाता है, उसको दफना दिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, शरीर देखने लायक नहीं होता है। इसलिए जड़ शरीर से आसक्ति रखना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है कि नहीं। इसलिए असित बोला गया, अचित बोला गया, निरानंद बोला गया। इसलिए भौतिक शरीर का जो गुण है, वो जो गुण जो भी दिखाई पड़ते हैं भौतिक शरीर में, भौतिक शरीर को धारण करने पर जो गुण दिखाई पड़ते हैं, उसका आधार आत्मा है, उसका आधार भगवान। इसलिए हमारे अंदर जो भी गुण दिखाई पड़ते हैं वो सब केवल उसके कारण कृष्ण है। इसलिए भागवत में लिखा गया, यस्यास्ति भक्तिर्भविता भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र सवासते सुराः अरो भक्तस्य कुतो महागुणा मनोरथे नास्ति धावतो भई। जो कृष्ण के भक्त है उनमें सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं, सारे देवताओं के गुण। देवताओं के गुण क्यों? कृष्ण के गुण आ जाते हैं, क्योंकि जीवात्मा तो भगवान की अंश है। लेकिन जो कृष्ण के भक्त नहीं है उनमें कौन से अच्छे गुण हो सकते हैं? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद से बोला, लॉयर बोला कि कई अगर कोई व्यक्ति अगर सड़क पार कर रहा है, किसी बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करा रहा है, तो प्रभु कहता है कि वो अपने आप में तो एक अच्छा गुण है, फिर इसमें क्या, इसमें कृष्ण का क्या गुण है? वेयर इज गॉड इन देयर इन द सेंटर? तो बोलता है कि अगर एक सड़क पार करा रहे बूढ़े व्यक्ति को, तो वो भी अपने आप में अच्छा कार्य है। प्रभुपाद कहते हैं, इफ यू डोंट नो व्हाट इज गुड, हाउ कैन यू डू गुड? अगर आप जानते नहीं कि अच्छा क्या है, तो अच्छा कर कैसे करते हैं? जब तक आप लॉयर नहीं बन जाते हैं, तब तक आप कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि अगर आपको पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है, तो अच्छा करेंगे कैसे आप किसी के लिए? इसलिए ये सारे गुण जो पाए जाते हैं, ये सब भगवान कृष्ण का स्रोत है। तो यहां पर बड़ा अच्छा बताया इसलिए कि उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं इसलिए कि हे मेरे प्रिय पुत्र, उसकी जो सुंदरता है इतनी सुंदर है, भगवान इतने सुंदर है कि आभूषणों के सौंदर्य को भी बढ़ा रहे हैं। रूप गोस्वामी भी एक बात बता रहे हैं ललित माधव में कि एक दिन कृष्ण ने जो है अपने सौंदर्य को देखा, और सौंदर्य को जब देखा द्वारका में, तो अपने ही सुंदरता से प्रभावित हो गए कृष्ण, अपनी सुंदरता से प्रभावित हो गए और सोचने लगे, जिस तरह से राधा रानी मेरा आलिंगन करती है, उस तरह से मैं इस रूप का आलिंगन करना चाहता हूं। तो कृष्ण का इस प्रकार से विचार करने लगे थे। लेकिन हम देखे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के शुरुआत के कुछ श्लोकों में बताया है, और खासकर इस श्लोक में जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के आने का मुख्य कारण बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं, राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान्येव स्वाध्येयो येनाद्भूतमधुरिमा कीदृशो वरमदीया सौख्यं चास्य मधुनुभवता कीदृशं वेति लोभा तद्भावाया समझनी शचि गर्भ सिंधु हरिंदुः। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा, अपने भगवान के उन गुणों जिनका स्वागत केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती है, राधा रानी प्रणय महिमा, और उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों में विमोर होकर श्रीमती सचिदेव की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो रूप माधुरी का आस्वादन करना चाहते हैं राधा रानी कृष्ण, रूप माधुरी का आस्वादन करना चाहते हैं कृष्ण। किस तरह से? जिस तरह से राधा रानी कर रही, राधा रानी जिस तरह से कृष्ण के रूप माधुरी का आस्वादन करती है, उस तरह से कृष्ण भी उसी भाव में कृष्ण आस्वादन करना चाहते हैं, जो नहीं कर पाए ब्रज में। हालांकि उन्होंने कह तो दिया कि मैं करना चाहता हूं राधा रानी की तरह, जिस तरह से राधा रानी मेरे रूप का आस्वादन कर रही है, उसी तरह से मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाए कृष्ण। इसलिए राधा रानी की भले ही 25 दिव्य गुण बताए श्री रूप गोस्वामी ने, और कृष्ण के 64 दिव्य गुण बताए, लेकिन ये जो 25 दिव्य गुण है राधा रानी के, ये भारी पड़ते हैं कृष्ण में। और खासकर राधा रानी का जो आखिरी गुण है 25वां गुण, रूप गोस्वामी कहते हैं उस गुण में क्या बता रहे हैं, शी फुली कंट्रोल कृष्णा, पूरी तरह से कृष्ण को अपने नियंत्रण में रखती है, पूरी तरह से राधा रानी कृष्ण को अपने नियंत्रण में रखती हैं। स्वर्ण गल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लवम उदारम, जयदेव गोस्वामी यही कह रहे हैं, मेरे मस्तक को अलंकृत करते हैं, शोभायमान बनाते हैं। कौन? राधा रानी। उनके चरण बड़े उदार है, कमल सदृश है, बड़े उदार है राधा रानी के चरण। जब मेरे मस्तक पे उनके चरण पड़ते हैं तो मेरा मस्तक जो है वो क्या हो जाता है, अलंकृत हो जाता है। तो ये राधा रानी का गुण है। राधा रानी अपने प्रेम से कृष्ण को पूरी तरह से वशभूत कर देती है। इतने गुणों के बावजूद भी कृष्ण के पास इतने सारे गुण है, लेकिन राधा रानी का जो ये गुण है वो कृष्ण को बांध देता है। राधा रानी बांध देती है, इसलिए कृष्ण एक दिन विलंब कर दिया उन्होंने रासलीला में आने के लिए, और उस दिन क्या हुआ, राधा रानी ने लताओं से बांध दिया कृष्ण को। राधा रानी बांध देती है कृष्ण को, कैसे, अपने गुणों के कारण, अपने प्रेम के कारण। ऐसे गुण जो है वो कृष्ण में नहीं पाए जाते हैं शायद इस कारण से। ये भी कृष्ण की इच्छा है, ठाकुर भक्ति जय धर्म में ये भी कृष्ण की इच्छा है कि वो किसी बात पे तो अनभिज्ञ हो, सब में अभिज्ञ है, अभिज्ञ सराट है, लेकिन राधा रानी का जो गुण है, उनका माधन महाभाव है, वो कृष्ण में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये कृष्ण की इच्छा है, ये मुझ में नहीं होना चाहिए, ये राधा रानी में हो और राधा रानी के इस महाभाव का मैं आस्वादन करना चाहता हूं। तो इस तरह से ये चैतन्य महाप्रभु, इसलिए सर्व भट्टाचार्य को बता रहे थे जब उनके साथ संवाद हुआ, उनका कि वेदों में भगवान को मनुष्य निराकार बताया गया है, निर्गुण बताया गया है। निर्गुण का मतलब है उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, और निराकार जो बताया जा रहा है शास्त्रों में, तो इसका मतलब यह है कि वेद यह स्थापित करना चाहता है कि जो भी कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है वो दिव्य है, वो दिव्य है, उसमें कोई भौतिक गुण नहीं है, भौतिक लक्षण नहीं है, दिव्य गुण है, सगुण है, भगवान साकार है। साकार का मतलब यह है उनका रूप जो है वो दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। तो इस तरह से इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कन्विंस करते हैं सर्व भट्टाचार्य को कि आत्माराम शुमने निर्ग्रंथ ही अभी उर्क्रमे कुर्वंती आयुत की भक्ति इत्थम बुधो गुण हरि। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई यहां पे चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु को सर्व भट्टाचार्य कह रहे हैं कि मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि क्या आप श्लोक की व्याख्या कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप विद्वान हैं, आप सबसे पहले व्याख्या करें, फिर उसके बाद जो भी कुछ अगर मैं कर सकूंगा करूंगा, जो मेरे संभव होगा, लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले आप श्लोक की व्याख्या करें। तो सर्व भट्टाचार्य श्लोक की व्याख्या 9 तरीके से की, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक की व्याख्या 18 तरीके से की है। 18 तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने किया, और यही देखकर सर्व भट्टाचार्य चकित हो गए। आप परामर्श सुनो निर्ग्रंथ अभी उर्क्रमे कुर्वन्ति अहित की भक्ति उत्तम बुधो गणो हरि। अनंत कोटि गुण है भगवान के। आत्मराम जो ब्रह्मवादी है, जो आत्मा में रमण कर रहे हैं, वो भी भगवान के गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, भगवान की लीलाओं से आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि चार कुमार वो ब्रह्मवादी थे। चार कुमार के बारे में भागवत में वर्णन आता है, बहुत सुंदर श्लोक है, तस्यारविंदे नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्व तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता सौंद्रेण चकार तेषां संक्षोभम अक्षरजुषां अभिचित्त तन्मोहो। बहुत सुंदर, भगवान के चरणों से जो तुलसी है, उनके जो चरणों में तुलसी अर्पित की जाती है, उसकी सुगंध को जब लिया उन्होंने नासिका के माध्यम से सुंगा जब उसको, तो चार कुमार जो है भगवान के गुणों से प्रभावित हो गए, भगवान की लीलाओं से प्रभावित हो गए, और उसके बाद संप्रदाय की स्थापना कर दी उन्होंने, कुमार संप्रदाय, चार कुमार। इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी भी ब्रह्मवादी थे। सुखदेव गोस्वामी लगभग 16 साल या 12 साल बताया जाता है अपनी माता के घर में रहे, बाहर ही नहीं निकल रहे थे क्योंकि माया का प्रभाव न पड़ जाए। वेद व्यास जी को द्वारका से लेके आना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण द्वारका दी जी को, और के अनुरोध से प्रार्थना से सुखदेव गोस्वामी जैसी माता के घर से बाहर निकले सीधा वन में प्रवेश कर गए, भाग्य वहां से घर छोड़। ऐसा जो भौतिक संसार में तो होता नहीं है कि माता के गर्भ से जैसे बाहर निकले तो आप जंगल की तरह भागे या घर छोड़ के चले गए इस्कॉन में माता के गर्भ से बाहर निकलते ही, तो बहुत तेजी से भागे घर की तरफ और वेद व्यादि के शिष्यों से कुछ श्लोकों का उच्चारण सुना, भागवत के श्लोकों का, तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रभावित हुए। और श्लोक कौन से थे जिसमें भगवान के सुंदर रूप का वर्णन था, भगवान के गुणों का वर्णन था। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिह्वां सयापायत अपि असाध्वी लेवे गतिं धात्रीं उचितां तद्रम्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमः। कितने दयालु है कृष्ण, कितना हृदय उनके अंदर दया है, करुणा है। पूतना आई थी स्तनपान करा के, विष के माध्यम से विष देकर कृष्ण को मारना चाहती थी, आपको मारना चाहती थी, लेकिन आपने क्या किया, उसको माता का स्थान दे दिया गोलोक धाम वृंदावन में, धात्री का स्थान दे दिया आपने। क्या करुणा आपके हृदय में, क्या गुण है आपका, गुणों से आकृष्ट। और उसके बाद एक और श्लोक का उच्चारण किया था उन्होंने, भरा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत भास कनक कपिशं भयदयंतीं च मालां रंध्रावेण रघुर सुनया पूर्ण गोपवृंदे वृंदारण्यम सपन रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है कि वेणु वादन करते हुए, पीतांबर वस्त्र धारण करते हुए, मोर मुकुट धारण किया है, वैजयंती माला उन्होंने पहनी हुई है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं कृष्ण और वन में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से वर्णन जो किया है सुखदेव गोस्वामी ने सुना, इन श्लोकों को जब सुना तो सुखदेव गोस्वामी वापस आ गए वेद व्यास जी के पास और वेद व्यास जी से उन्होंने श्रीमद् भागवत सुना। और यह है वास्तव में कृष्ण की सुंदरता का वर्णन, यानी कि उनके गुणों का वर्णन। इसी अंदर के चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत गए, वहां गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिले। गोपाल भट्ट गोस्वामी से उन्होंने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया, भट्ट तुम्हार लक्ष्मी ठाकुरानी कांतावक्ष स्थिता पतिव्रता शिरोमणि आमा ठाकुर कृष्ण गौ गोचार साधु भैया के न चाहे ताहर संगम। भट्ट, तुम्हारी लक्ष्मी ठाकुरानी वैकुंठ पति नारायण वक्ष विलासनी पतिव्रता शिरोमणि है, हमारे ठाकुर कृष्ण गाय चराने वाले गोप है, तो भी साध्वी लक्ष्मी कृष्ण के संग में कामना करती है, इसका क्या कारण है, क्या कारण है कि लक्ष्मी बेलवन में तपस्या कर रही है आज तक उनको कृष्ण मिले नहीं। भट्ट ने कहा, इससे पहले भट्ट कहते हैं कृष्ण नारायण एक ही तो है, कृष्ण नारायण के अपेक्षा लीला चातुरी और रास विलास आदि की अधिकता है, इसलिए यदि कौतुक वक्ष लक्ष्मी कृष्ण संगम सुख की कामना करें तो उन्हें पाति व्रत्य धर्म के नाश होने की संभावना कहीं है। यह तो ठीक है महाप्रभु ने कहा, पर कृष्ण को पाने के लिए लक्ष्मी कितना कुछ तप जप और व्रत आदि करती है तो भी उनको संग प्राप्त करने की उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती। शास्त्र कहते हैं श्रुतियों ने भी तप कर कृष्ण को पा लिया पर लक्ष्मी आज तक नहीं पा सकी, इसका क्या कारण है। तो लक्ष्मी जी जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु क्षमा करी वेंकट भट्ट बोलते तो वेंकट भट्ट को बोलते हैं यहां मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, वेंकट भट्ट बोलते यहां मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरी शूद्र बुद्धि कृष्ण की कोटि समुद्र गंभीर लीलाओं को कैसे समझ सकती, आप स्वयं कृष्ण है, अपनी लीलाओं के मर्म को जिसे जताए वह जान सकता है। तो यहां पर देखिए चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को यह पूछ रहे कि क्या कारण है, क्या कारण है कि लक्ष्मी जी इतनी घोर तपस्या कर रही है लेकिन फिर भी उनको कृष्ण का सानिध्य नहीं प्राप्त हो रहा है, आज तक सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा। प्रभुपाद जी कहते हैं उनको सानिध्य इसलिए नहीं प्राप्त हो रहा बिकॉज शी इज कॉन्सर्ट ऑफ नारायण, वेरी सिंपल, क्योंकि नारायण की अर्धांगनी है, कॉन्सर्ट है, तो इसलिए उनको कृष्ण का सानिध्य नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए भागवत में भी वर्णन है कि अगर जो देहाभिमानी है, जो देहात्म बुद्धि में है, जो ज्ञानी है, वो कृष्ण को कभी नहीं पा सकते, यहां तक कि जो वैकुंठ के भाव में है वो भी कृष्ण को नहीं पा सकते हैं, जैसे लक्ष्मी नहीं पा रहे हैं, लक्ष्मी जी घोर तपस्या कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण के गुण को समझना बड़ा कठिन है। लक्ष्मी जी ने चाहा कि उसी स्वरूप में वो ब्रज में प्रवेश कर जाए, बिना अनुगत्य हुए, गोपियों की अनुगत्य हुए, ब्रज भाव को बिना स्वीकार किए वैकुंठ के भाव में ही कृष्ण के पास वो पहुंचना चाहती है, यह संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का यह संभव ही नहीं है। उनको वैकुंठ का भाव, उनको भगवत ऐश्वर्य का भाव छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान कर्मानी अनावृतम, ये ज्ञान का आवरण हटाना पड़ेगा उनको, और कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना पड़ेगा, कृष्ण के गुणों का श्रवण करना पड़ेगा, उनके भक्तों से, ब्रजवासियों के मुख से। तो इस तरह से यह वर्णन आता है। तो इस तरह से कई बातें बताई जा सकती है। तो मायावादी ये सब बातें नहीं समझ सकते। मायावादी का अर्थ ही होता है जो हमेशा माया में है। मायावादी जो है कृष्ण के नाम को, उनके रूप को, उनके गुणों को, उनकी लीलाओं को माया मानते हैं। तो सोचते हैं कि हां अधिक से अधिक सत्व गुण में होंगे, भगवान कृष्ण, राम, ये सब सत्व गुण में थे, बड़े अच्छे अच्छे कार्य उन्होंने किए, लेकिन फिर भी ये सब माया में। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म, निष्कलंक ब्रह्म, जिसमें कोई रस नहीं है, जिसमें कोई लीला नहीं है, जिसमें कोई कार्यकलाप नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे ब्रह्म में हम लीन होना चाहते हैं। हम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं, आई एम दैट ब्रह्म, तत्त्वमसि, यू आर दैट, आप वही हो, आप वही हो, क्या वही हो। तो वो जो निराकार ब्रह्म ही जो है, उसने आपको अपने आप को बांट दिया है। हम सब जीवात्मा और निराकार ब्रह्म ही है, हम सब निराकार ब्रह्म जो है बिखर गया माया का जब प्रभाव पड़ा, और इसलिए हम जीवात्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। वाह क्या बात है। अगर ब्रह्म सत्य है तो माया का प्रभाव कैसे पड़ा फिर, प्रश्न यह उठता है। अगर ब्रह्म सत्य है तो माया का प्रभाव कैसे पड़ा, तो माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अर्थ यह है इसका कि अगर ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या नहीं है, जगत अनित्य है। अनित्यम सुखम लोकम, भगवान गीता बता रहे हैं, दुखालय व शाश्वतम, क्या बताया भगवान ने गीता में, दुखालय, किसी ने कहा कि दुखालय अश्वाश्वतम का मतलब है कि दुख यहां शाश्वत नहीं है, किसी टीकाकार ने बताया कि दुख यहां अगर शाश्वत नहीं है, कैसी ऐसी व्याख्या लोग करते हैं, बड़ा दुख होता है सुनते हुए। भगवद गीता के ऊपर टीका लिख रहे हैं ऐसे लोग कि दुख शाश्वत नहीं है। हां हम क्या आपकी बात मानते हैं, दुख शाश्वत नहीं है, अगर आप कृष्ण भक्ति को अपना लेंगे तो। मायावादी बने रहेंगे तो दुख शाश्वत ही रहेगा आपके साथ। तो इसलिए मायावाद का जीवन जो है, मायावादियों का जीवन नीरस है, बिल्कुल ड्राई है, और ये सोहम सोहम बोलते पूरा जीवन बीत जाता, पूरा जीवन बीत जाता उसी में। चैतन्य महाप्रभु जब गए केशव भारती से संन्यास लेने के लिए कटवा में, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक दिन पहले सपने में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था बता रहे केशव भारती को, मुझे एक सपना आया, और सपने में कल रात्रि को मैंने क्या किया था, आपके कान में मैंने मंत्र फूंका था। केशव भारती ने कहा कौन सा मंत्र है जो आपने मुझे बताया कल रात्रि के सपने में। तो चैतन्य महाप्रभु दाएं कान में जाके वो मंत्र बोले, क्योंकि मायावादी सन्यासी जो सन्यास लेते हैं तो वो मंत्र देते हैं तत्त्वमसि, सन्यास दंड मिलता है इस तरह से, एक दंडी, तत्त्वमसि, यू आर दैट, आप वही हो, आपने सन्यास लिया है, अब आप नारायण बंदे हो, कंफर्म, आप ऑथराइज बोनाफाइड नारायण हो, तत्त्वमसि। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैंने ये मंत्र आपसे सुना था, दाएं कान में महाप्रभु ने क्या किया, केशव भारती के दाएं कान में तत्त्वमसि मंत्र छोड़ दिया, वैश्व विचार के साथ, वैश्व कंसेप्शन के साथ। वैश्व कंसेप्ट क्या है, वैश्व कंसेप्शन क्या है बताइए इसका, तत्त्वमसि का वैश्व विचार क्या है, क्योंकि ये तो वेद की वाक्य है, तो वेद वाक्य जो है वो गलत नहीं, वाक्य तो है ही, लेकिन इसका वैश्व विचार क्या बताइए, तत्त्वमसि। हाँ जी, नहीं, हां तत्त्वमसि का अर्थ यह भी है तस्य त्वमसि, आप उनके हो, आप उनके हो, तस्य त्वम असि, लेकिन वो क्या कहते हैं तत् त्वमसि आप वो हो, कितना डिफरेंस है देखिए। तो इस संस्कृत की भाषा ऐसी है, क्या करें, इंटरप्रिटेशन होता ही रहता है इसमें। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया कृष्ण भारती से वैष्णव विचार के साथ। तो इसलिए इन वेद वाक्यों को ठीक ठीक से हमें समझना है। तो ये कुछ वर्णन किया था हमने आज के श्लोक में कि कैसे यहां सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि आप अणु को परमाणु को गिन सकते हैं इस पूरे सृष्टि में, लेकिन भगवान के गुणों को समझना बड़ा कठिन है, अचिंत है भगवान। इसलिए एक ही माध्यम है, कैसे फिर समझा जाए, भक्त्या मां भी जानाति यावन या शास्त्री तत्वता। नहीं, भगवान गीता बता रहे कि जब आप भक्ति करते हैं तो क्या होता है, भगवान बता रहे हैं तत्व से समझ सकते हैं। जन्म कर्म चय में दिव्यम एवं ज्योति तत्वतः, उसमें तत्व है। क्या आप जन्म कर्म भगवान का समझ लेंगे तत्व से, तो फिर दोबारा संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा आपको। तो इन गुणों को अच्छी तरह से समझना है, सुनना है। 64 दिव्य गुण दिए गए हैं इस ग्रंथ में, इलेक्ट्रॉन डिवोशन या भक्ति रसायन सिंधु में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा अनुवाद किया है। उन गुणों को हमें पढ़ना चाहिए, भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में अध्ययन करना चाहिए, गुणों पर विचार करना चाहिए, है ना, कि भगवान में ये गुण है। भगवान के गुणों का जब बार बार स्मरण करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे अंदर भी वो गुण विकसित होंगे। हमारे अंदर गुण है वो, क्योंकि हम भी सच्चिदानंद विग्रह है, आंशिक मात्रा में वो गुण हमारे अंदर भी है, लेकिन उस गुणों को दोबारा हमें विकसित करना है, पुनः जागृत करना है हरि नाम के उच्चारण से और कृष्ण कथा के श्रवण से, तब ये संभव होगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?